नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रची गई एक बहुत ही विशिष्ट पुस्तक श्रृंखला पर बात करने वाले हैं।
हाँ जी, क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला।
बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो 1988 से 1990 के बीच इस श्रृंखला पर पूज्य गुरुदेव के अपने ही विचारों निर्देश हैं।
और ये निर्देश काफी साफ हैं। पूज्य गुरुदेव ने इसे अपने जीवन भर के लेखन का सार मक्खन कहा है।
मक्खन और अपना ज्ञान शरीर भी कहा।
हाँ, ज्ञान शरीर। उनका मानना था कि यही वो विचार हैं जो असल में भविष्य का निर्माण करेंगे।
वाकई उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके सारे जीवन के साहित्य को एक पल्ले पर रखें,
हाँ,
और इस क्रांतिधर्मी साहित्य को दूसरे पर, तो इन 22 पुस्तकों का वजन ज्यादा होगा।
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है।
तो ये समझना दिलचस्प है कि उन्होंने इसे इतनी अहमियत क्यों दी, क्या खास था इसमें?
देखिए, इन स्रोतों से तो यही लगता है कि वो इसे सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं मानते थे।
बिल्कुल नहीं।
अच्छा, उन्होंने इसे कहा इस युग की युग गीता, और इस पर जोर दिया कि उसे बार बार पढ़ा जाए, समझा जाए, आत्मसात किया जाए।
युग गीता।
हाँ, उनका उद्देश्य साफ था, ये विचार लोगों के जीवन में उतरें, उनकी सोच बदलें और फिर युग परिवर्तन का माध्यम बने।
पूज्य गुरुदेव के शब्द यहाँ बहुत शक्तिशाली लगते हैं। वो कहते हैं हमारे विचार बड़े पहने हैं, तीखे हैं।
हाँ, ये पढ़ा मैंने भी।
दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं वो सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं।
हाँ,
ये तो एक तरह का आह्वान है ना?
बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पुकार थी, और उन्होंने इन विचारों को क्रांति के बीज कहा।
क्रांति के बीज।
हाँ, उनका पक्का विश्वास था कि अगर ये विचार फेल गए ना, तो ये भविष्य में जरूर धमाका करेंगे।
मतलब बड़ा बदलाव लाएंगे।
यहाँ क्रांति का मतलब शायद सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल नहीं है।
नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। यहाँ मतलब ज्यादा गहरा है। वैचारिक क्रांति, सामाजिक बदलाव, सोच बदलने की क्रांति। और इस पर उनका जोर इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने पहले के महत्वपूर्ण काम जैसे गायत्री महाविज्ञान,
हाँ, और प्रज्ञा पुराण भी।
हाँ, उनको भी कहा कि अभी कुछ समय के लिए इनको अलग रख दो और सिर्फ इन क्रांतिधर्मी पुस्तकों पर ध्यान लगाओ।
जी, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है ना, सूप और भोजन वाला।
हाँ, कि आज तक हमने सूप पिलाया, अब क्रांतिधर्मी के रूप में भोजन करो। इसका क्या मतलब निकालें?
इसका मतलब काफी गहरा है। सूप शायद तैयारी का दौर था, नींव रखने जैसा। लेकिन भोजन, यानी ये क्रांतिधर्मी साहित्य, उनके हिसाब से वो ठोस पोषण था, वो ताकत थी जो व्यक्ति और समाज को बदलने के लिए जरूरी है।
अच्छा, तो ये एक तरह से निचोड़ था उनके काम का।
बिल्कुल, उन्होंने खुद कहा कि ये 1940 से लेकर तब तक के उनके पूरे काम का सार है, जीवन भर का लेखा जोखा है।
जीवन भर का लेखा जोखा।
हाँ, और ये सिर्फ उपदेश नहीं थे, उन्होंने इसे अपने उत्तराधिकारियों के लिए वसीयत कहा, जीवन और सोच बदलने का सूत्र बताया।
और वो बात भी तो है कि उन्होंने कहा इन्हें महाकाल ने स्वयं मेरी उंगलियां पकड़कर लिखवाया।
जी हाँ, ये दिखाता है कि इसके पीछे कितनी गहरी दैवीय प्रेरणा थी।
वसंत पंचमी 1990 को उन्होंने वंदनीय माता जी से जो कहा वो तो बहुत ही मार्मिक है।
हाँ, वो शब्द वाकई दिल को छूते हैं।
उन्होंने कहा मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा।
ज्ञान शरीर का प्रकाश जन जन के बीच में पहुंचना ही चाहिए।
सब बच्चों से कहिएगा कि मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांतिधर्मी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।
इससे साफ पता चलता है कि वो इन्हीं विचारों को अपनी असली विरासत मानते थे, अपना भौतिक शरीर नहीं बल्कि ये ज्ञान शरीर।
और इस विरासत को, इस ज्ञान शरीर को फैलाने के लिए उन्होंने कोई रोक टोक भी नहीं रखी।
नहीं, कोई बाधा नहीं। कहा कि इन्हें लागत मूल्य पर छपवा कर प्रचारित प्रसारित करने की सभी को छूट है, कोई कॉपीराइट नहीं है।
मतलब मकसद बिल्कुल साफ था, ये विचार हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक।
हाँ जी, जैसे श्रवण कुमार का उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गए थे, उसी लगन से, उसी भावना से हर कार्यकर्ता इसे पढ़े, जीवन में उतारें और दूसरों तक पहुंचाए।
और इसे अगले चरण में जाने के लिए जरूरी भी बताया उन्होंने।
हाँ बिल्कुल, जैसे ये एक पड़ाव पार करने जैसा हो।
इस श्रृंखला में कुल 22 पुस्तकें हैं ना?
हाँ,
और उनके शीर्षक भी काफी कुछ बताते हैं।
हाँ, शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं।
जैसे 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य, ये तो सीधे भविष्य की बात है।
बिल्कुल। फिर युग की मांग, प्रतिभा परिष्कार, व्यक्ति की क्षमताओं को निखारने पर जोर,
सतयुग की वापसी,
एक आदर्श समाज की कल्पना,
और महिला जागृति अभियान, समाज में नारी की भूमिका, उनका सशक्तिकरण।
हाँ, ये तो बस कुछ उदाहरण है। लगता है हर पुस्तक समाज और जीवन के एक खास पहलू को संबोधित करती है। जी, ये शीर्षक ही दिखाते हैं कि पूज्य गुरुदेव भविष्य की चुनौतियों को और संभावनाओं को कितनी गहराई से देख रहे थे। उनका ध्यान व्यक्ति निर्माण से शुरू होकर परिवार, समाज और फिर विश्व कल्याण तक जाता था।
और इन सब का आधार विचार परिवर्तन।
हाँ, मूल में वही था, विचार बदलो दुनिया बदलेगी।
तो अगर हम संक्षेप में कहें, पूज्य गुरुदेव के लिए क्रांतिधर्मी साहित्य सिर्फ पुस्तकें नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये उनके दशकों के ज्ञान, उनकी साधना, उनके अनुभव का एक तरह से सजीव रूप था, उनका ज्ञान शरीर।
हाँ, उनका ज्ञान शरीर, और वो इसे व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना को बदलने, एक नए युग को लाने के लिए अनिवार्य मानते थे।
ये सिर्फ पढ़ने की सामग्री नहीं,
ना, ये एक सक्रिय मिशन था, विचारों से क्रांति लाने का एक उपकरण। इसीलिए तो इसे सिर्फ पढ़ने पर नहीं, बल्कि गहराई से समझने, अपनाने और फिर दूसरों तक पहुंचाने पर इतना जोर दिया गया।
अंत में एक बात सोचने के लिए रह जाती है। पूज्य गुरुदेव ने बड़े आत्मविश्वास से कहा था, हम लिखें तो असर न हो, ऐसा न होगा।
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है।
आज का युग तो सूचनाओं से भरा पड़ा है, हर तरफ जानकारी है। ऐसे में इतने पक्के विश्वास के साथ रखे गए विचारों को क्रांति के बीज मानना, इसका क्या अर्थ हो सकता है आज?
ये वाकई सोचने का विषय है। क्या विचारों में आज भी वही ताकत है जिसकी बात पूज्य गुरुदेव कर रहे थे? और अगर है, तो इन बीजों को कैसे पनपाया जाए?
बिल्कुल, ये एक प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।